नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहां जहां भी पहुंचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहां जहां भी पहुंचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवारों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महामहिमन के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा है और उस सच्चे तंबू का सेवक है जिसे मनुष्यों ने नहीं परंतु स्वयं प्रभु ने खड़ा किया है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो प्रतिदिन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठते हैं। आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। आप उन्हें हर एक प्रकार की बुराइयों से, विपत्ति से, शैतान के छल प्रपंच से बचाएं, उनके जीवन को आशीषित करें। आज अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं परंतु आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। पिताजी, आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुए और चंगाई दें ताकि वे स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम को महिमा दे सकें। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। इस पद से स्पष्ट होता है कि इस पत्री के लिखे जाने के समय यरूशलेम का मंदिर खड़ा था और याजक अपनी सेवा को कर रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 8:5 में लिखा है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसी को करना है। मेरा तो यह मानना है कि परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग के वास्तविक मंदिर का नमूना दिया था कि वह वैसा ही मंदिर रूप बनवाकर मिलाप वाला तंबू खड़ा करे। अपनी सरल सुंदरता में मिलाप वाला तंबू प्रभु यीशु का प्रतीक है। सुलेमान के मंदिर में तो जटिलता के कारण यह सरलता समाप्त हो गई थी। इस तंबू की दीवारें सोने से मढ़े हुए तख्ते थे जिसकी लंबाई 45 फुट और चौड़ाई 15 फुट थी। इसके 2 भाग थे। पहला भाग पवित्र स्थान कहलाता था और उसमें 3 वस्तुएं थी, सोने का दीपदान, भेंट की रोटी रखने के लिए सोने की मेज और धूप जलाने के लिए सोने की वेदी। दीपदान प्रभु यीशु का प्रतीक था, जगत की ज्योति। भेंट की रोटी की मेज प्रभु यीशु को दर्शाती थी कि वह जीवन की रोटी है। सोने की वेदी जहां महायाजक प्रार्थना चढ़ाता था वह प्रभु यीशु का प्रतीक थी जो हमारा महान मध्यस्थ है। प्रायश्चित दिवस पर महायाजक विभाजन करने वाले पर्दे के पार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। वहां 2 वस्तुएं थी। पहला, लकड़ी का एक सोने से मढ़ा हुआ एक संदूक जो वाचा का संदूक जिसमें पत्थर की पट्टियों पर लिखी 10 आज्ञाएं रखी थी। उसके साथ मन्ना का डब्बा और हारून की लाठी जिसमें कोपलें निकली थी। 10 आज्ञाएं इस सत्य का प्रतीक हैं कि प्रभु यीशु व्यवस्था को पूरा करने आया था। एकमात्र वही था जिसने व्यवस्था को पूरा पालन किया। मन्ना से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु आज भी जीवन की रोटी है। हारून की लाठी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की प्रतीक है। और तब हम देखते हैं दूसरा, वाचा का संदूक नक्काशी किए हुए था और वह दया का आसन था। उसके ऊपर 2 सोने के करूब थे। और हम देखते हैं वर्ष में 1 बार महायाजक इस दया आसन पर लहू चढ़ाता था। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर इसराइल वंशियों से भेंट करता था। मिलाप के तंबू के चारों ओर मलमल का 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा पर्दा था। इस बाहरी स्थान में दो वस्तुएं थी, पीतल की वेदी जहां पाप बलि चढ़ाई जाती थी, परंतु भक्त जन फिर भी पाप करते थे। वहां पीतल की हौदी थी जिसमें याजक स्नान करते थे। यह पापों के शोधन का प्रतीक था। मेरे मित्रों, पवित्र स्थान में याजक सेवा करते थे और आराधना करते थे। हम प्रार्थना करके, वचन का मनन करके और उसकी संगति में रहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करके उसकी आराधना करते हैं। केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था, परंतु यीशु की मृत्यु पर वह पर्दा बीचों बीच फट गया था, अर्थात महापवित्र स्थान का मार्ग अब खुल गया था। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मार्ग सदा के लिए खोल दिया था। हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ने इस मिलाप वाले तंबू को सीधा खड़ा कर दिया कि महापवित्र स्थान अब स्वर्ग में है, क्योंकि वह वहीं आसीन है। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि धूप जलाने की सोने की वेदी और वाचा का संदूक अब स्वर्ग में है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं ही वहां है। यदि आप इसराइलियों के साथ जंगल में होते तो देखते कि मिलाप वाला तंबू उनके शिविर के केंद्र में होता था, जिसके ऊपर रात में आग और दिन में बादल उपस्थित रहता था। याजक अपनी सेवा में व्यस्त दिखाई देते थे। बलि चढ़ाना और परमेश्वर द्वारा दिए गए अनुष्ठान पूरे करना आदि। मेरे प्रियो, यह सब वास्तविक की छाया थी और वास्तविक स्वर्ग में है। आज प्रभु यीशु स्वर्गीय तंबू में आपके और मेरे लिए सेवा कर रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे, आपने तो कहा था कि इस अंश में लेखक मांस खाने की बात कर रहा होगा, परंतु यहां तो ऐसा लगता है कि अभी तक दूध ही पी रहे हैं, क्योंकि अब तक का अध्ययन तो बहुत सरल है। हम कब गहरी बातों पर विचार करेंगे? मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं, क्या प्रभु यीशु इस पल आपके लिए वास्तविक है? यदि आप अब भी रीति रिवाजों और सुंदर आराधनालयों के पीछे भाग रहे हैं और सोचते हैं कि यही सच्ची आराधना है, या आपके विचार में संडे स्कूल पढ़ाना या गायन मंडली में गीत गाना परमेश्वर की सेवा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके लिए इस पल स्वर्ग में है। वह आपके लिए क्या अर्थ रखता है? अब आप दूध का गिलास ना मांगे। मार्था आपको रसोई की चिंता छोड़कर प्रभु यीशु के चरणों में बैठने की आवश्यकता है। उसे अपने जीवन में वास्तविकता बनाना होगा। आज जब आपने घर छोड़ा तो क्या आपने उसे अपने साथ लिया था? क्या आप उसकी उपस्थिति के बोध में थे? वह स्वर्ग में आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। वह आपका मध्यस्थ है। आपको पाप स्वीकार करने के लिए उसके पास जाना होगा। मेरे मित्रों, आप क्यों अपने पादरी को अपने समस्याओं से परेशान कर रहे हैं? आप उसके पास परामर्श खोजने क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने पादरी के पास क्यों जाते हैं? क्या प्रभु यीशु आपके लिए आज वास्तविक है? बचपना छोड़कर आगे बढ़ें। जीवित उद्धारकर्ता की उपस्थिति में आप आ जाएं। लेखक यही कहना चाहता है, परमेश्वर आपकी आंखों पर से पर्दा उठा ले और प्रभु यीशु को उसके संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण उद्धार, उसके संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण देख रेख आप पर वास्तविक प्रकट करें। मेरे प्रियो, मुझसे कहा जाता है, आप भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैं परमेश्वर का वचन सिखाता हूं और मनुष्यों को जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति में लाने का प्रयास करता हूं। जब ऐसा हो जाएगा तब सब कुछ अपने आप ही यथास्थान पर आ जाएगा। आप उसके साथ ज्योति में चलते हैं तो अपने आप ही आप उसको लेकर सड़क पर भी चलेंगे। यदि प्रभु यीशु आपके साथ है तो आपको बहुत से काम छोड़कर विचार करना होगा। अपने साथ प्रभु यीशु की उपस्थिति के बोध के कारण आप अपने आचरण पर ध्यान देंगे। वह जीवित मध्यस्थ है, वह जीवित है। मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूं कि प्रभु एक अधिक उत्तम तंबू में सेवा कर रहा है, स्वर्ग में एक सच्चे तंबू में। उसने परमेश्वर के सिंहासन को दया का आसन बना दिया है और हमसे कहता है कि हम हियाव रखकर बड़े विश्वास के साथ उसके पास आएं और विश्वास रखें कि वह है। हमें जिस बात की सबसे अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास में सहायता कर। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मेरा अविश्वास मेरे विश्वास से बड़ा है। हमें उसके पास विश्वास के साथ आना है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अतः हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु की वास्तविकता को रखना है। आप उसे न तो आंखों से और न कानों से देख और सुन सकते हैं, परंतु मन की आंखों से देख सकते हैं और मन के कानों से सुन सकते हैं, जो केवल विश्वास ही के द्वारा से खुलते हैं। मेरे मित्रों, यह कैसी अद्भुत बात है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम इस अंश में आकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम उसकी उपस्थिति में हैं। यह प्रकाष्ठा है, यह परमेश्वर के वचन का एक अद्भुत भाग है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, नई वाचा पुरानी वाचा से उत्तम है। इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय के 6 पद में लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उन याजकों से बढ़कर सेवा प्रभु यीशु को मिली। यहां का तंबू स्वर्ग के तंबू की नकल था। प्रभु यीशु स्वर्ग में उपस्थित है और वह हमें उद्धार की दशा में रखता है। मुझसे अब कोई पूछे, आपके विचार में क्या कोई उद्धार से वंचित हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं, यदि प्रभु यीशु स्वर्ग में ना हो तो मैं सूर्यास्त से पहले उद्धार से वंचित हो जाऊंगा। उसे मेरे साथ समस्या हो सकती है और आपके साथ भी समस्या हो सकती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह वहां है। ओह, हमें उसकी कैसी आवश्यकता है। वचन में लिखा है, वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। हमारे पास नई वाचा है, जिसे हम नया नियम कहते हैं। यह वाचा परमेश्वर ने बांधी है और पुराने नियम की वाचा से अलग है। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और फिर मिलाप वाले तंबू और उसमें सेवा कार्यों के निर्देश भी दिए। वही पाप का समाधान था। व्यवस्था पालन द्वारा किसी का उद्धार नहीं हुआ था। जी हां, कोई भी परमेश्वर से कहने योग्य नहीं था कि उसने व्यवस्था की शर्तें पूरी कर ली है और अब परमेश्वर उसे ग्रहण करे। जी नहीं, वे लगातार बलि चढ़ाते जाते थे, क्योंकि वे व्यवस्था का उल्लंघन करते रहते थे। व्यवस्था उन्हें बताती थी कि वे परमेश्वर की महिमा से रहित थे। संपूर्ण व्यवस्था मात्र एक छाया थी। यद्यपि वह मिलाप वाला तंबू उन्हें परमेश्वर ने दिया था और वास्तविक था, वह उस तंबू का प्रतिरूप था जिसमें प्रभु यीशु आज सेवा करता है। दूसरे शब्दों में हमने देखा है कि हमारा महायाजक उत्तम है, हमारा बलिदान भी उत्तम है, हमारा तंबू भी अधिक उत्तम है। यह सब स्वर्ग में पीतल की वेदी में केंद्रित होता है, क्योंकि प्रभु यीशु तीनों ही है। वह अधिक उत्तम याजक है जो वहां सेवारत है, वह अधिक उत्तम बलिदान है, उसने अपनी जान को बलि कर दी, वह एक अधिक उत्तम तंबू में सेवा करता है, उसने आपके और मेरे पापों के लिए अपना लहू चढ़ाया है। मेरे मित्रों, मेरा मानना है कि प्रभु यीशु ने स्वर्ग में अपना वास्तविक लहू चढ़ाया था। मेरे विचार में जब वह मरियम पर प्रकट हुआ था तब वह यही करने जा रहा था। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 17 पद में हम इसे पढ़ते हैं। वह उस समय अपना ही लहू लेकर स्वर्ग जा रहा था। मेरे विचार में उसका लहू वहां अनंत काल तक रहेगा कि हमें स्मरण कराता रहे कि उसने हमारे उद्धार के लिए क्या बलिदान दिया। किसी आलोचक ने मेरे विचार को पिछड़ा हुआ बताया, परंतु मेरे विचार में प्रभु यीशु का लहू चाहे पृथ्वी पर बहा हो या स्वर्ग में, वह पिछड़ा हुआ नहीं है। शमौन पत्रस, जिसे असभ्य मनुष्य कहा जाता है, वह भी प्रभु यीशु के लहू को अनमोल लहू कहता है। एक प्रचारक जो प्रभु यीशु के लहू पर बहुत अधिक बल देता था, उससे एक महिला ने कहा, क्या यह विचार पिछड़ा हुआ नहीं है? तब उसने उत्तर दिया, आपके और मेरे पाप की अपेक्षा मैं प्रभु यीशु के लहू में कुछ भी असभ्य नहीं देख पाता हूं। मैं भी यही मानता हूं कि उसका लहू आज भी स्वर्ग में रखा है और अनंत काल तक रहेगा कि हमें प्रभु यीशु द्वारा दिए गए अनंत मूल्य का स्मरण करवाए, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार इसराइल व्यवस्था का उल्लंघन करने पर बलि चढ़ाता था, परंतु व्यवस्था से पूर्व वे अब्राहम के समान विश्वास में परमेश्वर के पास आते थे। नूह भी परमेश्वर के साथ सर्वथा भिन्न संबंधों में था। मेरे विचार में आप बाइबल को पढ़कर यह ना देख पाए कि परमेश्वर ने विभिन्न युगों में मनुष्य के साथ भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार किया है, तो आपका अध्ययन बौद्धिक नहीं है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना होगा और मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार के भिन्न भिन्न युगों को भी स्वीकार करना होगा। इसलिए लेखक कहता है कि अब हमारी वाचा अधिक उत्तम है, जो और अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर निर्भर है। यद्यपि आप और मैं मसीह विश्वास होने के कारण उस वाचा के सहभागी हैं, परमेश्वर ने इसराइल का त्याग नहीं किया है और ये और अधिक उत्तम प्रतिज्ञाएं सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज्य में पूरी होंगी। मेरे प्रियो, यह हम सब के लिए क्या ही अद्भुत है कि हमारा एक महायाजक है जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर मर गया। उसने उस लहू को हमारे लिए बहाया ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें, और आज वह मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना करता है, मध्यस्थता का काम करता है, महायाजक का काम करता है। यह हम सब के लिए एक सौभाग्य है। क्यों ना हम उस महान प्रभु पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा से ही हम उस उद्धार को प्राप्त कर लें, क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा और उन दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। तो मित्रों, क्यों हम इस काम में उलझे रहें? क्यों ना हम उस विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से प्रभु के उद्धार को प्राप्त करें जिसे वह मेरे लिए, आपके लिए देना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने उस बहुमूल्य लहू को बहा दिया ताकि उस लहू के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, उस पाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस भयानक दर्द से, उस मृत्यु से बच जाएं। वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मुझे और आपको मृत्यु मिलनी थी, परंतु प्रभु यीशु ने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर हमारे बदले में ले ली और वह मर गया ताकि हम बच जाएं। मेरे प्रियो, आज यह अवसर आपके लिए है कि आप उस पर विश्वास करें। मैं नहीं जानता कि आप किस परिवार से हैं और किस पृष्ठभूमि से हैं, परंतु मैं इस बात को जानता हूं कि हमारा प्रभु सबके लिए मरा है ताकि हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर अपने जीवन में आनंद और शांति को प्राप्त करे। यदि आप चाहते हैं तो उसके पास आ सकते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु मसीह की महिमा देखो, उसने ये क्या किया है। मैं घटी तो पानी को ही उसने मैं कर दिया है।
यीशु की महिमा,
यीशु मसीह की महिमा देखो, उसने ये क्या किया है। मैं घटी तो पानी को ही उसने मैं कर दिया है।
उसकी महिमा गाए हम, उसको दंडवत करते हम।
उसकी महिमा गाए हम, उसको दंडवत करते।
कपन में